नमो सिद्धार्णम् नमो आयिर्याणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सव्वसाहूणम् ईशो पंच नमो यारो सव पाव पनासनो मंगलानं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। पंच परमेश्वरी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, अपने ही परिणामों के माध्यम से जीव निरंतर रागादि भावों को करता है। उन्हीं रागादि भावों से वह कर्मों का बंध के बाद उसकी सत्ता, फिर उदय का फल आदि भोगना और फल को भोग करके उन कर्मों को निर्जरित करना, ये सतत अनादिकाल से चल रहा है। कर्मों के उदय में आने के उपरांत उनके उदय में उसी प्रकार के भाव बनते हैं, उन भावों की उत्पत्ति में वो कर्म निमित्त बन जाते हैं और उसी के अनुरूप वह पुनः नया कार्य प्रारंभ करता है। क्योंकि जैसे विचार बनते हैं वैसे हमारा कार्य भी बाहर साकार होने लगता है, कर्म उसमें निमित्त बनता है। पर यदि हम इन कर्मों के प्रभाव किस प्रकार से होता है और क्यों होता है, कैसे होता है, इस सिद्धांत का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके उनके स्वभाव को पहचान लेते हैं, तो उनके स्वभाव के विरुद्ध भी जीव चल सकता है। पुरुषार्थ के द्वारा कर्मों को निर्जरा करके मोक्ष पाता है, यह एक मार्ग उसके लिए खुला हुआ है। कर्मों के उदय में कर्मों के स्वभाव को पाता है, ये तो एक सामान्य नियम है, परंतु कर्मों के स्वभाव को, उसके प्रभाव को स्वीकार करता हुआ वह सतत सदा ही काल संसार में ही बने रहे, ऐसा कोई सिद्धांत नियामक नियम नहीं बनता। क्योंकि कर्म भी शक्तिशाली और आत्मा भी शक्तिशाली है, दोनों पहलवान हैं। इन पहलवानों को दोनों को यदि मैदान में उतार दिया जाए और एक पहलवान जो ये आत्मा है इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाए कि कर्मों को कैसे गिराया जाता है, उस प्रशिक्षण के आधार से यदि मैदान में आत्मा उतरता है तो निश्चित है कर्म हारेगा और आत्मा जीतेगा। पर जब तक आत्मा को कर्म क्या है, मैं किस कारण से दुखी हूं, संसार में क्यों घूम रहा हूं, परिभ्रमण कर रहा हूं, ये चिंतन जब तक नहीं करेगा और इस संबंधी कर्म सिद्धांत का नॉलेज ज्ञान उसको जब तक प्राप्त नहीं होगा, तब तक वह कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। बंधन के कारण पता चलने पर ही बंधन से मुक्ति होती है, बंधन का कारण पता नहीं चला तो जीव भी बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। अंदर जाना पता है और बाहर आना पता नहीं है तो नहीं आ सकेगा। बंद कर लेना बंधन का मार्ग तो अनुभूत है, मैं कर्मों को बांध रहा हूं ये भी पता नहीं है, वैसे तो मैं कर्मों को बांधता हूं कि नहीं बांधता हूं, उसका फल भोगता हूं कि नहीं भोगता हूं, अब वो सिद्धांत ही मालूम नहीं है तो सब बच्चों के समान परिस्थिति है। परंतु जीव जग सकता है, सोच सकता है, विचार कर सकता है, विचारवान बन सकता है, ये परिस्थिति उसमें है, इसलिए उसके सामने कर्म का फल प्रत्यक्ष मिलने पर फिर विचार करता है ये ऐसा क्यों, मुझे ऐसी घटना क्यों घटी जो घटना नहीं चाहिए, जैसा होना नहीं चाहिए वैसा क्यों हुआ। कभी कभी विचार करता है कि नहीं, कभी कभी ऐसे विचार आते हैं कि कोई ईश्वर की देन है, भगवान की देन है, या कोई दूसरा देता है, या मेरे कारण से ही ऐसे होते हैं, इसमें पर का हाथ है क्या, ये स्वतः हो रहे हैं, क्या चीज है ये सब, संसार के सुख दुख के संबंध में चिंतन करना कभी कभी प्रारंभ करता है जीव। इसी चिंतन को उस दुख के क्षण में अगर आगे बढ़ाता है और उसको उस काल में सम्यक योग मिलता है, सत्संगति मिलती है, तो सत्संगति के माध्यम से इस सिद्धांत को जरा और चिंतन करने में आगे बढ़ाता है तो निश्चित बात है व्यक्ति संसार के असली बंधनों से छुटकारा पाने का रास्ता उस वक्त पा सकता है। शंट परसेंट जीवों को यही पता नहीं कि हम दुखी क्यों हैं, किस कारण से, और उसके मूल में महावीर भगवान कहते हैं कर्म ही उसका कारण है, और उन्होंने स्वयं इन्हीं कर्मों को पराजित करने के लिए, इन्हीं कर्मों की निर्जरा के लिए दिगंबरी दीक्षा ली, त्याग तपस्या की, त्याग और तपस्या के माध्यम से ही इन कर्मों को जीतना संभव है, उस रास्ते पर वो चले। और वह रास्ता था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये तीनों रत्नत्रय हैं और इन रत्नत्रयों को धारण किए बिना संसार में किसी भी जीव को बंधन से मुक्ति संभव नहीं है। रत्नत्रय तीन ही हैं लेकिन कर्म तो 148 है। हमें बंधन मुक्त होना 148 से है और अपनाना तीन को है। ये तीन में इतनी कैपेसिटी है, इतनी शक्ति है, इतनी योग्यता पात्रता है इनमें कि तीन ही मिलकर के सारे कर्मों को नष्ट करते हैं। रत्नत्रय किसका साधन है? मोक्ष प्राप्त करने का साधन, बंधन से मुक्त होने का साधन है। और यह बंधन पर का ही बंधन है, कर्म पर है। इस पर के बंधन में हम अनादि से पड़े हैं, इनसे छुटकारा पाना है। तो कर्मों के स्वभाव के संबंध में जब हम अध्ययन करते हैं पता चलता है कि कर्म वस्तुतः अपने अपने उदय में जीव को अपना अपना स्वभाव का या उसके पास जो स्वभाव है उसके परिणाम फल का अनुभूति कराता है। जैसे कल चर्चा चली थी, सम्यक प्रकृति के 9 कर्म क्या हैं? तो बताया जिना यतन है। मिथ्यात्व के 9 कर्म क्या है? तो बताया 6 अनायतन है। अनायतन मिथ्यात्व के 9 कर्म बाहर में अनायतन है। और सम्यक प्रकृति का उदय हो तो उसके 9 कर्म सत्संग है। मतलब ये है कि सम्यक प्रकृति का यदि उदय है किसी को तो सम्यक दृष्टि तो है ही। जो जो सम्यक दृष्टि है और क्षौक्षम सम्यक दृष्टि, जो जो सम्यक दृष्टि है क्षौक्षम सम्यक दृष्टि है उसके उदय में नियम से सम्यक प्रकृति तो रहेगी एक, और 2 की सत्ता रहेगी, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व 2 की सत्ता रहेगी। सम्यक प्रकृति के उदय में आने पर वो भी अपना फल देता है। क्या देता है? अनायतन से बचो, आयतन के तरफ जरा ज्यादा ध्यान दो, वहां से लाभ उठाओ। मन पूरा आकर्षित रहता है आयतन की ओर। ये किस कर्म का परिणाम? ये सम्यक प्रकृति का परिणाम है। ये भी एक कर्म है। और यह कर्म कैसे आया, कहां से आया? बाहर से आया क्या? बाहर से नहीं आया है, वो मिथ्यात्व का ही टुकड़ा है। बाहर से आने वाला तो एक मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व प्रकृति बाहर से हम कार्मण वर्गना के रूप में ग्रहण करके उसको दर्शन मोहिनी के रूप में जब कन्वर्ट करते हैं तो एक मिथ्यात्व प्रकृति बनती है सत्ता में। जब जीव अपने स्वभाव को पहचान कर सम्यक्तु धारण करने के उन्मुख होता है उस वक्त उस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करके सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। 3 टुकड़े करने पर एक उसमें मिथ्यात्व नामक एक टुकड़ा रह जाता है, एक सम्यक मिथ्यात्व रह जाता है और एक सम्यक प्रकृति। ये तीनों सत्ता में हो जाते हैं और इन 3 में से यदि सम्यक प्रकृति का उदय हो जाए और 2 का उपशमन हो जाए तो उस वक्त क्षायोपशम सम्यक तो इस जीव को प्राप्त होता है। क्षायोपशमिक सम्यक तो शायोक्षमिक सम्यक तो प्राप्त होने के उपरांत वो छावक्षम सम्यक दृष्टि जीव सम्यक प्रकृति के उदय का फल भोगता है। क्या करता है? उदय फल भोगते समय, उदय के फल को भोगते समय आयतन से ही आकर्षित रहता है, अनायतन से आकर्षित नहीं होता। ध्यान से सुन रहे ना, विचार करना है इस पर, बहुत मार्मिक विषय है। सम्यक प्रकृति उदय में है तो किधर आकर्षित करेगा? तो सम्यक दृष्टि को ही आयतन अच्छे लगते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव को मिथ्यात्व का उदय रहता है तो अनायतन अच्छे लगते हैं। दुनिया में 100% जीव अज्ञान में है। ये कर्म सिद्धांत, ये असली सिद्धांत जो वास्तव में हमारे जीवन के सुख दुख के निमित्त हैं, ये सिद्धांत ही नहीं जानता, इसलिए अनायतन के चक्कर में रहता है। उसकी अपनी धारणाएं हैं कि अनायतन मुझे भला करेगा। क्या कर सकते? अनायतन मुझे भला करेगा, अनायतन मुझे अनिष्ट पहुंचाएगा, इसलिए घबराता है। अनायतन हमें भला करेगा उससे आशा रखता है, भला करेगा इस विषय को लेकर के आशा रखता है। भय, आशा, स्नेह, लोभ, चार चीजें हैं ना सम्यक्त्व के विनाशक। व्यक्ति जब आशा रखता है कि दूसरा मुझे भला करेगा तो किसको लेकर के ज्यादा विचार करता है? अनायतन को लेकर के ही विचार करता है या आयतन को लेकर के भी वह ऐसा विचार करता है कि ये मुझे भला करेगा? कर सकता है ना। कितने ही लोग ऐसे हैं, मुनि महाराज मुझे भला करेंगे, अरहंत भगवान मेरा भला करेगा। कैसे करेगा? मैं वहां रहूंगा तो पुण्य बनेगा, पुण्य से भला होगा। ऐसा विचारता है, मैं वहां रहूंगा, उनकी भक्ति करूंगा, उनकी पूजा करूंगा, उनकी सेवा में उपस्थित रहूंगा तो पुण्य बनेगा, पुण्य का फल मिलेगा, पुण्य का फल मिलने पर मुझे भला होगा। इसलिए अरहंत मेरा भला करेगा ये कह करके तो आता है। सिर्फ भूल उतना इतना सा ही है उसमें, इतनी सी भूल है कि अरहंत मेरा भला करेगा, ये ठीक नहीं। अरहंत की भक्ति करने जा रहे हो, जाओ, कोई बात नहीं, करो अरहंत की भक्ति, पुण्य बनेगा, पुण्य से फल मिलेगा, गारंटी है। फिर ये क्यों कह रहे हो कि अरहंत मेरा भला करेगा? भला कौन कर रहा है वहां? पुण्य करेगा ना। भक्ति करते समय क्या बांधोगे? पुण्य बांधोगे। भक्ति करते समय अरहंत ये कहते हैं क्या, तुम्हारा भला करूंगा? हमारे लिए भला बुरा करने का अधिकारी अरहंत नहीं, हमारी भक्ति। हमारी भक्ति, हमारे परिणाम, हमारे भाव जैसे थे उस भावों के आधार से हमने कर्मों को बांधा। और कौन सा कर्म बांधा? पुण्य कर्म बांधा। पुण्य कर्म यदि बंधा है और वो उदय में आएगा तो आपको भला करेगा ही। तुमने जो बीज बोया है वही उगने वाला है और वही फल बरसाने वाला है। जिस बीज को बोया है वही उगेगा और उसके फल मिलेंगे। अब इसमें अरहंत कहां भला कर रहे हैं? लेकिन अज्ञानी जीव यह सोच करके आयतन के पास भी आता है तो अरहंत भला करेगा, इसी उद्देश्य से आता है। पर अरहंत भला करते हैं क्या? व्यक्ति भला नहीं करता, भला करता है अपना पुण्य कर्म। पुण्य कर्म का उदय हो तब व्यक्ति आता है, भला करने वाला सामने उपस्थित होता है। पुण्य कर्म का उदय न हो तो कोई नहीं आता। पुण्य कर्म का उदय न हो कोई नहीं आता, और पाप कर्म का उदय है फिर पुण्य कर्म का उदय नहीं है तो पाप कर्म का उदय तो है ही, तो भी कोई ना कोई आते हैं। कौन आते हैं पाप कर्म के उदय में? कौन आते हैं? हमको अनिष्ट करने वाले निमित्त आते, अनिष्ट करने वाले निमित्त आते, बुरा करने वाले निमित्त मिलते हैं। अब बुरा करने वाले निमित्त आकर के उपस्थित होने पर ये कहो कि ये बुरा हमारा कर रहा है, ये सही है कि गलत है? फिर वो भी गलत है। व्यक्ति जो आया है बुरा हमारा कर रहा है, ये हमारा बुरा इनके वजह से नहीं हो रहा है, मेरे पाप कर्म के उदय हैं तभी आया है, मेरे पास फिल्म है इसलिए पर्दे पर आया है चित्र, ये फिल्म ही ना हो मेरे पास तो पर्दे पर चित्र कहां से आएगा? इस कर्म सिद्धांत को तीर्थंकरों ने दिया है और इसी में शांति का मार्ग, सुख का मार्ग, आत्मकल्याण का मार्ग खोजने का उपदेश उन्होंने दुनिया को दिया। पाप और पुण्य ये दो कर्म हमारे फिल्म हैं, इसके आने पर पर्दे पर चित्र आता है और उसमें उस चित्र में पाप कर्म के उदय में निमित्त बाहर के मिलते हैं, मिलने पर ही फल मिलता है। पर निमित्त नहीं मिलेगा तो फल भी नहीं मिलेगा। केवल पाप कर्म का उदय आपको फल नहीं देता, निमित्त को जोड़ता है वो पाप कर्म। स्वर्ग में भी हो आओ कहता है, उतरो। तीर्थंकर जब जन्मे, जब दीक्षा ली, जब केवल ज्ञान प्राप्त किया, जब निर्वाण को प्राप्त किया, उस समय देवों को कैसे पता चल गया? ये यहां और वो 20 करोड़ मील, 50 करोड़ मील ऊपर, उनको कैसे खबर लगी? लेकिन अवधि ज्ञान भी तो तभी लगा सकते हैं जब कुछ संकेत मिले, उसके बिना अवधि ज्ञान भी लगाना संभव नहीं है, लगाते हुए काय को बैठेंगे? कुछ तो संकेत पहुंचते हैं तब अवधि ज्ञान लगा करके क्या बात है, घंटी बजती है मोबाइल की तब आप मोबाइल उठाते हैं। अवधि ज्ञान ऐसी ही बात है, अवधि ज्ञान क्या सतत लगा रहता है? मोबाइल क्या सतत शुरू रहता है? नहीं, मोबाइल में संकेत आते हैं, घंटी बजती है तब आपका हाथ उधर जाता है। अवधि ज्ञान लगाने का उपयोग भी तब जाता है देवों को जब कोई संकेत मिलता है, यहां का संकेत वहां जाता है। तो संकेत किसने दिया, किसने दिया? तीर्थंकर तो केवल जन्मे थे, उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा मैं जन्मा हूं हे इंद्र आ जाओ। हाँ, तीर्थंकर का वह अच्छे नहीं, तीर्थंकर का वह पुण्य, वह सेवक है, वो सेवक उसका काम करता है, वो संकेत भेजता है। हे तीर्थंकर भगवान तुम जन्म ले लो, मैं सब कुछ देख लूंगा। पुण्य कहता है तुम चिंता मत करो, तुमको कुछ भी विकल्प करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जन्म लेने की जरूरत, गर्भ में आने की जरूरत। सारे इंद्रों को सारे देवताओं को इकट्ठा करना मेरा काम है। पुद्गल पदार्थ में एक मैग्नेटिक शक्ति है, इस वैज्ञानिक तत्व को आप मानते हैं, आकर्षण करने की और विकर्षण करने की शक्ति है। दो मैग्नेटिक पत्थर ऐसा पकड़ो तो फेंकते हैं, ऐसा पकड़ो तो चिपकते हैं। दक्षिण उत्तर ध्रुव उसके दो होते हैं, सीधा पकड़ो तो चिपक जाएंगे, उल्टा करके पकड़ो, एक एक ऐसा पकड़ो, एक ऐसा पकड़ो, फेंकते उनको मिला नहीं सकते आप। पाप फेंकता है, पुण्य जोड़ता है, ये कार्मिक शक्ति है, ये कर्म की शक्ति है। ये कर्म की शक्ति कर्मों में है और उसमें कर्म में इस प्रकार की शक्ति कैसे आ गई, एक में आकर्षण शक्ति आ गई और एक में विकर्षण शक्ति आ गई। पाप में विकर्षण शक्ति है और पुण्य में आकर्षण शक्ति है, ये कैसी बात हो रही है, किसने डाला उसमें? अब सोचो मैग्नेट किसने बनाया? अपने आप बना क्या मैग्नेट? किसी मनुष्य ने तो बनाया। और मैग्नेट बनाते समय ऐसे आकर्षण शक्ति वाले और विकर्षण शक्ति वाले इन पुद्गल परमाणुओं को पकड़ पकड़ करके उनको इकट्ठा किया कि नहीं? कर्मों को हमने अनादिकाल से पकड़ पकड़ के इकट्ठा करके रखा है, उसमें भी एक मैग्नेटिक शक्ति पैदा है, पैदा हो चुकी है। और इकट्ठा करते समय अपने भावों और परिणामों के आधार से उनको हम आकर्षित करते हैं, पुद्गल परमाणुओं को, भावों के आधार से, परिणामों के आधार से। भाव अच्छे हैं तो पुण्य को इकट्ठा करते हैं हम, और भाव बुरे हैं तो पाप पुद्गल परमाणुओं को इकट्ठा करके रखते हैं। अपने भावों का प्रभाव पुद्गल पर पड़ता है और वे पुद्गल कन्वर्ट होते हैं आकर्षण और विकर्षण शक्ति को लेकर के, वो एकत्रित होते हैं। भोगभूमि में देखा, कल्प वृक्ष खड़े हैं, कोई नहीं है तो कोई फल नहीं दे रहा है, पर एक व्यक्ति आया, हाथ जोड़ दिया, मुझे दशहरा चल रहा है कर्जे का ही चाहिए, इतना ही कह रहे हो, इच्छा कर दे, भाव तो है हाथ जोड़ करके खड़ा है और वह निवेदन कर रहा है, इच्छा व्यक्त कर रहा है भावों से, उन इच्छाओं के कारण से उस पेड़ में रहने वाले पुद्गल परमाणु, जो व्यंजन, जो वस्तु आप मांग रहे हैं उसी रूप में सब कन्वर्ट होते हैं। पहले से नहीं रहते, ये प्रत्यक्ष बाहर से इस घटना को देखा जा सकता है। भोग भूमि में आप जो मांगते हैं इच्छानुसार वहां पुद्गल परमाणु कन्वर्ट होते हैं उस व्यंजन के रूप में, और वो आपके पास आते हैं। फिर महाराज आजकल क्यों नहीं होता? दशहरे की कर्जे का ही तो हम बनाना नहीं चाहते, लेकिन ऑटोमेटिक इच्छा मात्र से बन जाए, तो रसोई के घर में ऐसा आज क्यों नहीं होता? आज एक कर्म भूमि है, उसका एक पीरियड होता है, उसका एक काल होता है, उसी काल में ऐसा होगा, और उस काल में जन्म लेने वाले जीव विशेष भी होते हैं कि वो इतना पुण्य पीछे से लेकर के आए और कर्म भूमि से ही आए। भोग भूमि में जाने वाले सभी जीव कर्म भूमि से ही जाते हैं। वो कर्म भूमि से आए, पुण्य को जुटा करके पहले से तैयार करके बैलेंस बना करके यहां जन्म ले, तो उस पुण्य के बल पर जो व्यक्ति भाव करता है, उन भावों का प्रभाव पुद्गल परमाणु पर पड़ करके वो पुद्गल परमाणु इच्छित वस्तु के रूप में कन्वर्ट होते हैं और वो सामने आता है। ये पुण्य का फल है, इसको भोग भूमि कहते हैं। व्यक्ति देख लेता है बराबर, और ये भी देखो उत्तम भोग भूमि में उत्तम कर्जे का ही, मध्यम भोग भूमि में मध्यम कर्जिकाई और जघन्य भोग भूमि में जघन्य कर्जिकाई और कर्म भूमि में कर्जिकाई मिलती नहीं, बना के खाना पड़ता है। जहां बना के खाना पड़ता है उस भूमि का नाम कर्म भूमि, और जहां पर भावना मात्र से आपको बन के आता है उसका नाम भोग भूमि। ये प्रकृति की कुछ घटनाएं, कुछ आश्चर्य की बातें हमारे सामने हैं। भोग भूमि का व्यक्ति कोई ये देखना चाहिए कि मांगने पर तो कर्जे का ही नहीं मिल रहे और बना करके खा रहा है, एक भी व्यक्ति बना करके खाने वाला वहां नहीं मिलता। कहां? भोग भूमि में। और कर्म भूमि में एक भी मांग करके अपने आप आ रहा हो, मांगने के बाद किसी पेड़ के सामने पहुंचे और मांगा, आम पेड़ के नीचे पहुंचो, हे आम का पेड़, तू तो आम का आम तो देता ही है, साल भर में एक देता है, लेकिन ऐसा मत कर, मेरी इच्छा है, मेरी भावना है, मेरी इच्छा है, मेरी भावना है, एक पका हुआ पीला पीला आम, रसदार आम दे दो, भूख लगी है, एक आम दे दो। वो जवाब नहीं देता। क्यों नहीं दे रहा है? हमारे पास पुण्य नहीं है। भावना मात्र से ही अपने वस्तु को साकार करने का पुण्य चाहिए कि नहीं? वो पुण्य नहीं है। यदि पुण्य है तो क्षेत्र भी वैसा चाहिए। ये कर्म भूमि का क्षेत्र है, ये नहीं चलेगा। भोग भूमि का कोई व्यक्ति आया यहां और इन पेड़ों से फल मांगने लगा, मिलने वाला नहीं। पुण्य तो है, मांगने पर भी नहीं मिलने वाला। उस क्षेत्र में वो पुद्गल के जो पेड़ खड़े हैं उन्हीं पेड़ों के नीचे जाना पड़ेगा, नहीं तो हर जगह नहीं मिलेगा। दूध चाहते हैं तो गाय के पास ही जाना पड़ेगा, पेड़ के पास जाएंगे तो चलेगा क्या? हे पेड़ मुझे तो दूध दे दे, हे गाय मुझे आम दे दे। विपरीत वस्तु के पास जाने से, विपरीत क्षेत्र में जाने से मिलने वाला नहीं है। क्षेत्र भी अनुकूल चाहिए, क्षेत्र भी अनुकूल चाहिए और क्षेत्र के अनुरूप पुण्य भी चाहिए। ये दोनों के मिलने पर कार्य सिद्धि होती है। काल मर्यादा भी है। काल मर्यादा तब तक कि जब तक भोग भूमि खत्म न हो तभी तक मिलेगा, काल मर्यादा खत्म हो गई तो अब मिलना बंद हो गया, अब तो कर्म भूमि शुरू हो गई, अब मांगने से नहीं मिलने वाला है, अब तो निर्माण करना पड़ेगा। अब जो निर्माण करने पर फल देते हैं उनको उगाओ, आम का पेड़ लगाओ, आज इच्छा की है तो 8 साल बाद मिलेगा। आम का पेड़ लगाने वाला खाने की इच्छा से तो लगाता है, लेकिन आज लगाया है तो तुरंत नहीं मिलने वाला, और भोग भूमि में तुरंत, पर जाना वहीं पड़ेगा जहां जो फल जो पेड़ देता है वहीं जाना पड़ेगा। और मांगना ही पड़ेगा, चुपचाप खड़े हैं तो नहीं मिलने वाला। मांगने पर ही फल मिलता है, इच्छा करने पर ही फल मिलता है। इच्छा नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। जानसी सुर तरु देह सुख चिंतत चिंता रैन, बिन जानसे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दैन। 12 भावना में कहा है, कल्प वृक्ष मांगने पर ही फल देते हैं, ये नियम है, ये सिद्धांत है, ये प्रकृति नियम है, मांगने पर ही फल देंगे, विदाउट मांगे वो अपने आप आकर के आपको फल नहीं दे सकते। पर धर्म का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो आपको फल मिलता है विदाउट मांगे, मांगने की जरूरत नहीं। मोक्ष मांगने से मिलता है नहीं, कर्तव्य करने से मिलता है, पुरुषार्थ करने से मिलता है। क्या पुरुषार्थ? कर्मों को नाश करने का पुरुषार्थ करो, कर्म जो आए हुए हैं उनको झाड़ो, झाड़ते जाओ, ये कर्तव्य है। इच्छा नहीं, इच्छा करने की जरूरत ही नहीं, कहते हैं वो मोक्ष की इच्छा रखो ही मत, मोक्ष जिससे मिलता है वो केवल कर्तव्य करो, कार्य करते जाओ। क्या करते जाओ? कर्मों को झाड़ते जाओ, निर्जरा करते जाओ। कर्म सारे निर्जरित हो गए ना, उसी का नाम मोक्ष है। यहां से घर जाते हैं, घर जाने की चाह की जरूरत ही नहीं है, उस ओर जाने की जरूरत है। चाह की क्या जरूरत? मैं घर जाऊं, मैं घर जाऊं, मैं घर जाऊं, 8:30 बज गया मैं घर जाऊं, चाह करने की आवश्यकता है क्या? बोलो, नहीं है। चाह से ही घर आता है तो फिर यहां बैठे बैठे आ जाएगा, मैं घर जाऊं घर जाऊं घर जाऊं, घर नहीं जा सकता, तुम ही आओ। मैं नहीं जा सकता, तुम ही आओ, हे घर तुम ही आओ। घर अपने आप नहीं आएगा, और घर जाऊं कहने से भी घर नहीं जाओगे, घर जाने का कार्य करोगे तो घर तक पहुंच जाओगे। और इसमें इच्छा की जरूरत है क्या? नहीं है, केवल कर्तव्य की जरूरत है। उठकर के खड़े हो जाओ और जिधर घर है उधर कदम बढ़ाओ। जैसे यहां विदाउट इच्छा आप घर पहुंचते हैं, विदाउट इच्छा ही मोक्ष जाना संभव है, इच्छा रखते हुए मोक्ष जाना संभव नहीं है। मोक्ष जाने के लिए इच्छा की जरूरत ही नहीं, कर्तव्य की जरूरत है। क्या करना? कर्मों की निर्जरा। हाँ, इसकी इच्छा रखो, कोई बात नहीं, इच्छा करना भी हो तो मोक्ष की इच्छा मत रखो, कर्मों की निर्जरा करना है इसकी इच्छा रखो, ये आत्म कल्याण की इच्छा है। कर्मों की निर्जरा करना है, यह इच्छा कौन सी इच्छा है? आत्म कल्याण की इच्छा है। देखो, कर्म सिद्धांत ऐसा है, तो हम ये कह रहे थे कि दूसरे से हम मांगते हैं, ठीक है, दूसरे से मांगते हैं, दूसरे से फल मिलता है, लेकिन वह नहीं देता। विदाउट पुण्य के देगा कैसे वो? पुण्य का उदय होने पर ही देता है ना। पुण्यहीन व्यक्ति को फल देने लायक निमित्त मिलेंगे क्या? पुण्यहीन जीव को जिससे फल मिलता है वो फल देने वाले वस्तुओं का संयोग मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि दूसरा हमें फल दे सकता है, दूसरा हमें फल देता है तो पाप कर्म के समय में भी फल दें, पाप कर्म के उदय में भी फल दें, और व्यक्ति तो पाप कर्म के उदय में ही मांगता है। जिसके पास धन की कमी है वही तो भगवान के पास जाता है, हे भगवान हे ईश्वर मुझे धन दो। जो दुख में है वही पहुंचता है, सुख में हो वो क्यों पहुंचेगा? सुख वाला व्यक्ति किसी के पास नहीं जाता, सुख में यदि है तो भगवान को भी भूल जाता है। मस्त है तो ये कहता है भगवान ने बहुत कुछ दिया, अब भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, बस वो खुद ही भगवान बनता है। भगवान ने इतना दिया है कि मैं दूसरे को दे सकता हूं, ऐसा भगवान हूं, ले जाओ कि मैं छिक दान देता हूं। भगवान के पास जाने की क्या जरूरत है, ऐसा सोचता। दूसरा देता है कहना ये मिथ्या है। दूसरा तब देने का निमित्त बनता है जब आपका पुण्य पुण्य का बैलेंस हो। पुण्य है और आप इच्छा मात्र से फल प्राप्त कर सकते हैं तो भोगभूमि में तो पैदा ही नहीं हुई, अभी तो मिल जाएगा क्या? तो ये है कि कल अपना पुण्य भी फल देता है, निमित्त के बिना देता है, ये भी कहना गलत है। निमित्त के बिना देता है ये कहना भी गलत है। निमित्त के माध्यम से ही आपको फल मिलने वाला, कल प्रोक्षे के पास जाना ही पड़ेगा, वो निमित्त है आपके लिए, वस्तु प्राप्त करने के लिए वो निमित्त है, जाना ही पड़ेगा वहां, निमित्त चाहिए। निमित्त के बिना फल नहीं मिलता, पुण्य का फल नहीं मिलता। और आप पुरुषार्थ किसका करते हैं? निमित्त को ही जुटाने का पुरुषार्थ करते हैं तब फल मिलता है। जैसे दसरा आया तो निमित्त को आपने जुटाया, काय के लिए? दसरे में खाना पीना है, अच्छे से रहना है। क्या खाना है? कर्जी का ही खाना है, तरगा खाना है। कर्जी का ही तरगा खाने के लिए जरा तर्क करना है, तर्क करना है। क्या तर्क करना है? ये कैसे मिलेगा? ये तर्क करना है, मिलेगा, ये हो तो सब मिलेगा है। ये शक्कर लाओ, क्या लाओ, आटा लाओ, गेहूं लाओ, हरभरा लाओ, उसको पीसो, इन वस्तुओं को जुटाने के लिए ये चाहिए क्या नहीं? और इसके होने के लिए पुण्य चाहिए क्या नहीं? और ये कैसे आया है? पुण्य से ही आया है, पैसा पुण्य से आया है, उसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ा है। पैसा पुण्य से आया है और इस पुण्य के उदय में फिर वस्तु जुटाएंगे आप, पैसे से जुटाएंगे, पैसे को माध्यम बनाकर वस्तु को जोड़ा, वस्तु को जोड़ करके रखा, बनाया, सब तैयार किया, तरगा भी बना, कर्ज इकाई भी बना, और अकस्मात क्या हो गया, बुखार आ गया, ताप आ गया, उसी दिन आया और 8 दिन तक उतरा ही नहीं। वो अस्पताल गए, डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब क्या हो गया अकस्मात, एकाएक ही बुखार, तो आपको आपको चिकनगुनिया हो गया है, वो एक ही दिन में आता है, चिकनगुनिया हो गया है, और तरगा कर्जी का ये तेल के सामान, घी के सामान, जो व्यंजन होते हैं उसको 8 दिन नहीं खाना, आयत खत्म हो गया। 8 दिन तो हम उससे पहले ये कमाया, पुरुषार्थ लगाया, और निमित्त के बिना फल नहीं देता है कहने से हमने निमित्त को भी जुटा लिया, दुकान गए, वो सामान लाए, ये सामान लाए, शुद्ध घी बनाया, सब परिश्रम किया, और इसमें मच्छर ने गड़बड़ कर दिया, हमारे पुण्य पर पानी ही फेर दिया उसने, पुण्य के ऊपर पानी फिर गया। पुण्य का फल सामने है, पुण्य भी उदय में है, लेकिन पुण्य के फल को भोगने का योग नहीं है, पाप का उदय हो गया। 8 दिन तक तो ये सब कुछ किया और 8वें दिन सब रेडीमेड वस्तु सामने दिख रहा था और ये कहे कि अस्पताल पहुंच गए। ये पुण्य खरीदी कर आओ, क्या है वो सोच रहा है कि ऐसे कैसे हो गया, सब बनाया हुआ सब व्यर्थ हो गया। अब तो अगला मानम ही देख लो, अब अगले साल अगला दशहरा देख लो, अब इस दशहरा तो तुमको फल नहीं दिया। पुण्य भी हो, पुण्य के निमित्त भी मिल गए और सारे सुख देने वाले वस्तु भी सामने आ गए। सामने आने के बाद भी क्या गारंटी है कि आप सुखी हो जाओगे? कोई गारंटी नहीं। ये यहां तक आने तक गारंटी नहीं, अंदर गया तो गारंटी हो गया। और ये मुनि महाराज प्रैक्टिकल करते हैं रोज, हाथ में आता है, यहां तक गारंटी है हाथ में आ गया, शोध लिया, यहां तक गया था और दिख गया, कोई गारंटी नहीं। ये ग्रास पेट में जाएगा या नहीं जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। अंतराय आ जाता है, अंतराय कर्म का उदय, बड़ा कठिन है। और कैसा देखो ये सिद्धांत, कर्म का, बाह्य निमित्त का, पुरुषार्थ का, ये सब कुछ रहस्य हैं, ये सिद्धांत हैं, इसका अध्ययन करो, इसका अध्ययन करो, बड़ा रहस्य है ये। तीर्थंकर 12 साल तक कठिन तपस्या किए, महावीर भगवान ने 30 साल की उम्र में दिगंबरी दीक्षा ली और 12 साल तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, घाती कर्म नष्ट नहीं हुए, घाती कर्मों को नष्ट करने के लिए सतत चिंतनशील रहे वो। ये पाप कर्म है 4, इनको नष्ट किए बिना केवल ज्ञान होने वाला नहीं, इन्हीं कर्मों का अध्ययन करते रहे वो, जीवन को प्रैक्टिकल बनाया। वो जहां बैठते वहां पर जो भी संवेदनाएं मिलती थी उनको, बाहर से अंतर से जो भी संवेदनाएं होते थे उनको, उनको अनुभव करते थे। ये ऐसा ही क्यों होता है, इस तत्व पर भी चिंतन करते थे। हाँ, और कोई व्यक्ति आया और उन्हीं को गाली देने लगा, उस पर भी चिंतन करते थे। एक व्यक्ति आया मुझे पैर पड़ करके चला गया और एक व्यक्ति आया गाली देते हुए खड़ा हो गया, इसमें क्या कारण है? चिंतनशील हो जाते थे महावीर और दोनों में हर्ष विषाद नहीं करते थे। जो पांव पड़कर पूजा करके चला गया, अहोभाग्य अहोभाग्य मेरा धन्य भाग्य मुनि के दर्शन हो गए ऐसा कहते हुए चला गया, उसको देख करके पूजा करने वालों को देख करके प्रसन्न होते थे, खुश होते थे? नहीं, उनको न प्रसन्नता न खुशी। कोई आया है अपना हित कर रहा है, स्वयं का हित कर रहा है, कल्याण कर रहा है, इतना समझ में आता था उनको, इतना विचार करते थे। पर मेरी पूजा कर रहा है कह करके खुश होते थे? मेरी प्रशंसा कर रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है ऐसा कह करके प्रसन्न होते थे? नहीं, उनसे कोई मतलब ही नहीं था। कौन पूजा कर रहा है और कौन तलवार मार रहा है, गाली दे रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं था। पर जरूर चिंतन करते थे वो दोनों पर। एक आया पूजा करके चला गया और एक आकर के तलवार दिखा के चला गया, देख आइंदा से इस मार्ग पर आएगा तो देख। महावीर चिंतनशील हो गए, ये घटना ऐसी क्यों घटी, आखिर कोई कारण है ना इसमें, क्या कारण है? हाँ, तीर्थंकर ने भी पूर्व जन्म में ऐसा पाप कर्म करके आए, इसने किसी को रोका होगा, किसी को तलवार दिखाया होगा पूर्व भव में, तब के बंधे हुए कर्म अब उदय में जो आए, इनको मुनि अवस्था धारण करने के उपरांत उदय में आया और वो ऐसा निमित्त जुड़ गया। इस पाप कर्म ने बाहर के उन निमित्तों को जोड़ लिया जो इनको अनिष्ट कर सकता है। अब इतना पुण्य था कि अनिष्ट किए बिना केवल धमकी दे के चला गया, वो तलवार मारा तो नहीं, केवल कहा इस मार्ग पर हमारे खेत में आइंदा से आएंगे तो देख। ऐसा अज्ञानी जीव कहते, हे नंगा बाबा तू कहां जा रहा, इधर क्यों आता है, हमारे खेत सांप रहता इसमें जंगल वगैरह के लिए नहीं आना। ऐसा भी कहने वाले लोग मिलते और ऐसे भी कहने लोग वाले लोग मिलते हैं, बाबा जी आप कहां से आ गए, धन्य भाग हमारा खेत पवित्र हो गया आज। देखो एक किसान कह रहा है आप जंगल के लिए यहां आ गए, हमारा खेत पवित्र हो गया जबकि गंदा करके आए हम। और खेत कभी पवित्र होता नहीं, खेत में क्या डाला जाता है, सुअरों का खाद डाला जाता है सुअरों का। और ऐसे महान आत्मा आ गए जंगल के लिए यहीं आते, वो कहता है रोज यहीं आना, इस आशा से नहीं कि हमारे खेत में खाद बढ़ेगा, इसलिए नहीं कह रहा है, वो कह रहा है महान पवित्र रत्नत्रयधारी आत्मा ये हमारे खेत में इनके चरण पड़ेंगे तो हमारा खेत पवित्र होता, वो भक्ति से कह रहा है। एक ऐसा कह रहा है और एक भगा रहा है, देखो कितना फर्क है परिणामों में, वो भी कर्म को बांध रहा है ये भी कर्म को बांध रहा है और तीर्थंकर भगवान दोनों का चिंतन कर रहे हैं कि इसने ऐसा क्यों कहा और इसने ऐसा क्यों कहा, चिंतनशील हो गए। और ये चिंतन किसका, कर्म सिद्धांत का ही तो चिंतन है। महावीर भगवान शास्त्र नहीं पढ़ते थे, कर्म सिद्धांत का अध्ययन किस पेज पर क्या आया है, उन शास्त्र थे ही नहीं उनके पास। उनका शास्त्र क्या है, तीर्थंकरों का शास्त्र, ये खुली दुनिया प्रकृति यही शास्त्र है, खुला शास्त्र है ये। ये जो घटना घट रही है इसी का अध्ययन करना स्वाध्याय है, यही स्वाध्याय है। आप क्या समझते शास्त्र खोलेंगे पढ़ेंगे एक पेज तो यह हमारा स्वाध्याय का नियम पूरा हो गया, ऐसा समझते आप? ये स्वाध्याय नहीं, ये तो थ्योरेटिकल स्वाध्याय है। विषयों को ज्यादा समझने के लिए आपने कुछ थ्योरेटिकल किया, विषय ग्रहण कर लिया पुस्तक खोल करके, ये तो स्वाध्याय है ही। लेकिन ये थ्योरेटिकल स्वाध्याय है, प्रैक्टिकल स्वाध्याय अलग है। प्रैक्टिकल स्वाध्याय ये है कि जो आपने पढ़ा उसके संबंध में आप चिंतन में ले लो। अभी स्वाध्याय करके आप निवृत्त हो गए, थ्योरेटिकल स्वाध्याय पूर्ण हो गया है। अब आपके घर में एक व्यक्ति आया, वो गाली देता हुआ आया, अब क्या करोगे? स्वाध्याय करो, सतत स्वाध्याय करो। स्वाध्याय तो कर लिया था, थ्योरेटिकल हो गया था, क्या पढ़ के आए? पाप कर्म के उदय में व्यक्ति गाली देता है, यही तो पढ़ा था। पुण्य कर्म के उदय में व्यक्ति प्रशंसा करते हुए आता है, यही तो पढ़ के आए थे। और वो आ गया, एकदम से गाली देना शुरू कर दिया, तुम्हारा लड़का ऐसा फलाना और तुम ऐसे करते वैसे करते, कहते हुए घर में घुस गया, आ गया, गाली दे के चला गया। आपके मन में राग द्वेष होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए उस समय? स्वाध्याय करना चाहिए। कैसा स्वाध्याय? उस व्यक्ति के संबंध में आप सोचो, चिंतन करो, ऐसा वह क्यों आया, ऐसा गाली क्यों दिया? तो मेरे अशुभ कर्म के उदय से उसने ऐसा किया। हमने भी ऐसा कभी किसी को अनिष्ट किया होगा और उसी पाप कर्म के उदय में हमने कुछ गलती भी की होगी इस भव में, और उनको बुरा लगा, बुरा लगने से वो लौट के आया, अपने घर में आया और उसने भला बुरा कह करके चला गया, तो उसकी गलती नहीं, ये गलती उसकी नहीं, हमारे पाप कर्म अभी शेष है। उस पाप कर्म के उदय में वह ऐसा कह करके चला गया, ऐसा सोचना और राग द्वेष से बचना, ये असली स्वाध्याय है, ये असली प्रैक्टिकल स्वाध्याय है। ये थ्योरेटिकल स्वाध्याय क्यों करना? राग द्वेष से बचने के लिए। तो राग द्वेष से बचना पढ़ते समय नहीं होता, आपको प्रैक्टिकली घटनाएं सामने आने पर, जब परीक्षा में आप बैठे रहते हैं तब ये काम में आएगा, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा पहले दिन। आप चिंतनशील हो जाओ हर वक्त, ये कोई जरूरी नहीं कि स्वाध्याय उसी का, ये मत समझो कि पुस्तक खोल करके पढ़ने का नाम स्वाध्याय। जिंदगी को स्वाध्यायमय बनाओ, और तीर्थंकरों ने ऐसे ही बनाया, उनके पास कोई ग्रंथ नहीं थे, ये स्वाध्याय तो करते ही नहीं थे वो, थ्योरेटिकल स्वाध्याय पुस्तक खोलकर, सिर्फ चिंतन, हर वस्तु पर विचार, ये ऐसा क्यों, खोज, आत्मविज्ञानी बनकर जगत के हर पदार्थ पर हर वस्तु पर सतत चिंतनशील रहना, अच्छा बुरा सबका। एक व्यक्ति आया सामने, आया कोई एक जीव आया, वो लंगड़ा था, अंधा था, ये अंधा क्यों, सोचना प्रारंभ, ये किसका फल है, एक जीव ठीक है और एक अंधा है, एक आंख वाला है, ऐसा क्यों? एक कदम जहां रखते वहां जो भी निमित्त मिलते उन निमित्तों पर विचार सतत करते वो, और ऐसा चिंतन करते 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 12 साल व्यतीत होने के बाद उनके आत्मा के अंदर ऐसी समता, ऐसी शांति, ऐसा ध्यान, ऐसी एकाग्रता, ये सब विशेषताएं उपलब्ध हो गए, उन विशेषताओं की उपलब्ध होने पर अंतर मुहूर्त में जब वो ध्यान में बैठे, वो उनको क्षपक श्रेणी पर ले जाकर के उनके ही परिणाम, उनको क्षपक श्रेणी पर ले जाकर के केवल ज्ञान को पैदा करा दिया। अपने ही भाव केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है। केवल आत्मा में क्या करना है, अपने को राग द्वेष से मुक्त अवस्था सतत बनाए रखना है। राग द्वेष नहीं होना, हमेशा शांति, शांति हमेशा, निर्मल भाव, उच्च भाव, शुद्ध भाव, उसकी साधना जितना करोगे उतना कर्म कटेंगे। पूर्व के कर्मों को काटने का एक ही मार्ग, पूर्व के कर्मों को काटो और बंधन मुक्त हो जाओ। जितने कट गए उतने बंधन मुक्त हो गए, और जितने कटना है वो अभी बंधन पड़े हुए हैं। समता से ही, शांति से ही वो कर्म कटते हैं। हाय 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 त्राय त्राय करने से कर्म नहीं कटने वाले। ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ऐसे डगमगाने से, घबराने से काम नहीं चलता, यहां कर्म और बढ़ते हैं। बड़ा बारीक काम है, बारीक नक्शा बनाना है। बारीक नक्शा, प्रतियोगिता रखी जाती है। आपको कुछ कहा जाए तो लिख लो, इसको फटाफट लिख लेते हैं, पर आपके लिए एक पाबंदी लगाई जाए, एक आधी सेंटीमीटर से ज्यादा बड़े अक्षर नहीं होना, और फास्ट लिखना बहुत मुश्किल है। पाबंदी लगाई जाए, प्रतियोगिता रखी जाए, इतने से ज्यादा मोटे अक्षर नहीं होना और फास्ट भी लिखना। जो ज्यादा फास्ट लिखेगा, बारीक अक्षर लिखेगा, जिसके जितने बारीक होंगे उनको प्राइज मिलेगा। तो आपकी एकाग्रता की कितनी जरूरत है, वहां बारीक भी लिखना है, फास्ट भी लिखना है और बारीक लिखना है, और बिल्कुल पढ़ने में आना चाहिए। हम दूरबीन लगा के पढ़ेंगे, ध्यान रखना। और राइटिंग जिसकी अच्छी है, बारीक भी है और फास्ट भी हुआ है, उनके लिए बख्शीश मिलने वाला। बारीक काम करना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है बारीक काम करना। ऐसे आत्मा का संशोधन करते समय बारीकी का काम क्या है, उसमें यही है, हर क्षण शांति को नहीं त्यागना, बस एक ही, शांति को त्यागना नहीं, कंटिन्यू बनाए रखना उसको। मन को कभी खराब नहीं करना, राग द्वेष से मलिन नहीं करना, उसको सतत कंटिन्यू शुद्ध रखना। ले जाओ ऐसा ही पवित्र, गिरना नहीं चाहिए। ये घी है, कटोरी भरी हुई है, जल्दी जल्दी भी जाना है और नीचे भी नहीं गिराना। जाओ जितनी दूर तक जाते हो सक्सेस। और महावीर भगवान 12 साल चले ऐसे, 12 साल के उपरांत उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, सक्सेस हो गए वो। हमको भी यही करना पड़ेगा, आज न कल करना ही पड़ेगा। उसके बिना तो संसार बंधन से मोक्ष की प्राप्ति किसी को नहीं होती। ये कार्य जो है, ये काम जो है, ये असली धर्म है, ये असली धर्म है। धर्म 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 धर्म, दिमाग खराब कर दिया अनादिकाल से। धर्म 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 कहते कहते देखा देखे धर्म को मार्ग पर चलते रहे, उसमें कुछ मिला ही नहीं, भूसा ही कूटा है, भूसे में से एक भी दाना नहीं निकला। धर्म का मर्म मालूम नहीं, धर्म करते गए। धर्म धर्म धर्म, कर्म बढ़ाते गए। बहुत अज्ञानता है जीवों में, इतनी बड़ी अज्ञानता है। इस अज्ञानता से मुक्त होना धर्म है। पहले अज्ञानता से मुक्त हो जाओ, फिर रास्ते पकड़ो, फिर पुरुषार्थ करो, उस पर चलो, मेहनत से चलो, इसका नाम धर्म है। लोग कहां उलझे हैं देखो, अनायतनों में उलझे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। हाँ, ये अनायतन हमारा, ये तुम्हारा। धर्मात्मा लोग, बड़े धर्मात्मा, ऐसे धर्मात्मा होते ये लोग। आयतन अनायतन को लेकर लड़ रहे हैं, संप्रदाय को लेकर के लड़ रहे हैं, बहुमत को लेकर के लड़ रहे हैं, गर्व कर रहे हैं बहुमत पर, हम इतने लोग। गुरुओं को लेकर के लड़ रहे हैं, ये हमारे गुरु की परंपरा। मूर्ख लोग हैं, दुनिया में मूर्ख बहुत मिलेंगे। वस्तु स्वरूप का विचार करने वाले ज्ञानी कम रहेंगे, कर्म कम रहते हैं। वस्तु स्वरूप का विचारक धर्मात्मा कहलाता है। धर्म उसके पास जीवित मिलता है, कल्याण उसका होता है। और धर्म है क्या? कल्याण की वस्तु है। हम बहुमत पर क्यों जाएं? अल्पमत बहुमत को क्यों सोचें कि कितने लोग कर रहे हैं? ऐसा हो तो यदि सत्य है तो कितने लोग कर रहे हैं, ये क्यों देखते हो? ये मूर्खता है। नहीं, थोड़े तो होते ही हैं। सत्य है तो कितने लोग कर रहे हैं, ऐसे विचार आता है कि नहीं? शंट परसेंट लोग यही विचार करते हैं, सत्य है तो बहुत लोग करना चाहिए, क्यों नहीं करते? बहुत लोग करने पर फिर सत्य सिद्ध होता है क्या? दुनिया में अमृत भी है और शक्कर भी है, कौन सा मीठा होता है ज्यादा मीठा? अमृत। तो अमृत तो है, तो अमृत अच्छा, अच्छी चीज है, तो उसको कितने लोग खा रहे हैं ये देखना चाहोगे? तो एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा तो दुनिया में अमृत है ही नहीं, ऐसा निर्णय लोगे? जिसको चखना है वो चखेगा ही। हाँ, और जिसको चखना नहीं है उसका दुर्भाग्य है, वो दूर ही रहेगा, वो संसार परिभ्रमण करता ही रहेगा, आत्मकल्याण नहीं होगा। और सबसे ज्यादा, आपसे ज्यादा, एक सत्यवान से भी ज्यादा असत्यवान धर्म 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 कूदता है वो वहां कि हम धर्मात्मा हैं, धर्म करते हैं, धर्म बचाते हैं, उसको बहुत गर्व रहता है। लेकिन सब अज्ञान, अज्ञान पूर्वक करता है वो। आप ज्ञान पूर्वक करते हैं, वो अज्ञान पूर्वक करता है। वो दुखी होता है, आप सुखी होते हैं। वो चार गतियों में भ्रमण करता है और आप चारों गतियों से मुक्त होकर के मोक्ष में होते हैं। और जिस दिन होश में आता है तब उस दिन पश्चाताप होता है कि हमने ये क्या कर दिया, इतना कूदता था। और महावीर भगवान को ऐसा ही हुआ ना, एक कोटा कोटी सागरोपम काल तक कूदे हो, मेरा धर्म, मेरा धर्म, आदिनाथ का धर्म ठीक नहीं, मेरा ही धर्म ठीक। वो मरीची भाव से लेकर के शिव के पर्याय तक अधर्म को ही धर्म समझ करके धर्म करते थे वो। असंख्यात भाव बेकार गए, अनंत भाव बेकार गए, निबोध भी गया, जीन्द्र पर्याय में घूमा, मनुष्य पर्याय कई बार मिला, लेकिन बीच में धर्म समझ में नहीं आया। करता था धर्म, लेकिन नकली धर्म करता था, नकली धर्म को ही असली धर्म समझता था, परीक्षा नहीं करता था, बिना बेधड़क परीक्षा के ही धर्म करता था। पहली बार हुंडाव सिर्फ निकाल की ये पर्याय थी, मारीची की पर्याय। प्रथम व्यक्ति था जो धर्म के नकली बीज को बोने वाला, मारीची आदिनाथ भगवान के समोचरण को त्याग कर बाहर आया। देखो कैसे जीव की परिणति, एक तीर्थंकर की भी हिस्ट्री ऐसी रह सकती है तो हमारी कैसी रही होगी? चिंतन करो, स्वाध्याय करो। चिंता करनी चाहिए। शास्त्र भी पढ़ो, ज्ञान बढ़ाओ, पर प्रैक्टिकल स्वाध्याय ज्यादा करो, तब जीवन बनेगा। चिंतन ज्यादा किया करो, किसी विषय को लेकर के उसको शास्त्र सिद्धांत के आधार से, उस विषय के आधार से ये ऐसा ही क्यों, चिंतन करो। तीर्थंकरों ने वो रास्ता पकड़ लिया था चिंतन का। जहां सामायिक में बैठते हैं तब भी शांति है, विहार करते हैं तब भी शांति है, कुछ देखते हैं तब भी शांति है, आंख मींच लेते हैं तब भी शांति है, एकदम निर्मल परिणाम, एकदम आनंद की स्थिति में जीते थे। वो असली साधना है, धर्म की साधना, समता की साधना ही असली धर्म की साधना। ये ध्यान करने से ज्यादा विकास को प्राप्त होता है। ध्यानाभ्यास सामायिक जिसको बोलते हैं, सामायिक असली धर्म है, लास्ट स्टेज, इसके बाद कुछ नहीं। ध्यान ज्यादा करना, सामायिक ज्यादा करना, करते 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 आपको जो जीवन में अनुभव मिलेगा वो अलौकिक रहेगा। वो ज्यादा करना चाहिए। ध्यान शिविर में जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग ध्यान शिविर लगाते हैं, वो फलाना ये ध्यान, वो ध्यान, ये ध्यान, पर उसमें होता क्या है? ध्यान की सिद्धि नहीं हो पाती, और समता की सिद्धि ध्यान की सिद्धि है। समता भाव की सिद्धि ही ध्यान की सिद्धि है। व्यक्ति के जीवन में शांति आई क्या नहीं आई, उसके जीवन में पवित्रता आई क्या नहीं आई, उसका जीवन आनंदमय सदा है क्या नहीं, वो उसका रिजल्ट है। ध्यान शिविर में गए, 8 दिन 10 दिन रहे, आकर के लौट करके अपने जीवन में, अपने जिंदगी में क्या पाया, वो रिजल्ट दिखना चाहिए। आप कितने शांत हैं, आपके जीवन के हर पल कैसे निकल रहे हैं, उसमें आनंद है, उसमें शांति है, तो ध्यान का प्रभाव उस पर आया है। ध्यान करने पर व्यवहार जो हमारा 24 घंटे का चलता है उस पर, उस व्यवहार पर इस ध्यान का असर रहता है 24 घंटे तक असर होता है, निरंतर रहता है। ऐसा मत समझो कि ध्यान में जो आनंद आया वो ध्यान तक सीमित है, नहीं, ध्यान में जो अनुभूति मिलती है वो अनुभूति सतत 24 घंटे प्रवृत्ति पर भी उसका असर आता है। उसका असर, उसका रिजल्ट क्या है कि आपको क्रोध आना बंद हो गया, आपका घमंड सब कहां समाप्त हो गया पता नहीं, जैसे पहले थे अब आप वैसे नहीं हैं, आपका अहंकार समाप्त हो गया, क्रोध समाप्त हो गया, लोभ, वो करूं ये करूं ये करूं ये करूं, दुनियादारी की बातें, आशाएं, वो सभी शांत हो गए, आप सब कुछ शांति से करने लगे, अशांति से आप कुछ भी नहीं करते, शांति से कमा रहे हैं, शांति से खा रहे हैं, शांति से जीवन आनंदमय है। ये आनंदमय जीवन किसका प्रभाव है? ये ध्यान का प्रभाव है, ये ध्यान का प्रभाव। और वो ध्यान करना, ध्यान में आनंद की अनुभूति लेना परम आवश्यक। ध्यान में बैठने के बाद ही तत्व का चिंतन होता है विशेष रूप से। आप चलते फिरते ज्यादा इतना डीप तत्व का चिंतन नहीं कर सकते। कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में जो अनुभूतियां मिलती हैं वो ही इसमें नहीं मिलती चलते फिरते समय। ध्यान में विशेष अनुभूतियां मिलती है और विशेष अनुभूतियों का प्रभाव सामान्य अनुभूति पर बहुत पड़ता है। ये मार्ग अपनाना है। हम बता रहे थे कर्मों का जो उदय होता है उसका असर, उदय के आने पर उसका असर हम पर तो रहता ही है, पर जब हम पर उसका असर आने लगता है बिना निमित्त के उसका असर नहीं आता। जैसे पाप कर्म का उदय आया तो उदय आया है लेकिन अभी फल नहीं मिल रहा है। जब तक निमित्त नहीं आएगा तब तक फल नहीं मिलेगा। फिल्म है लेकिन डब्बी में बंद है, अभी वो बाहर नहीं निकला और निकलने के बाद चित्र जाएगा पर्दे पर, पर्दा निमित्त है। फिल्म रील में लपटा हुआ है और वो सामने आने वाला है, यहां आने पर वो पर्दे पर जाएगा। ये सत्ता है, फिल्म जो लिपटा हुआ है वो सत्ता है और एक एक करके जो उदय में आ रहा है बाहर आ रहा है वो उदय है। उदय में आने के बाद चित्र दिखता है, पर पर्दे ना हो तो पर्दा निमित्त है कि नहीं? पर्दा हो तो ही चित्र दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो निमित्त आने पर ही इस पाप का या पुण्य का फल हमको दिखाई देता है, निमित्त आए बिना दिखाई नहीं देता। ये है कर्म सिद्धांत, ये है रहस्य उसका। किंतु हमारी अज्ञानता कहां आती है मालूम? पर्दे को दोष देते हैं हम। इस पर्दे के कारण से ही हमारे लिए रोना आया, रामायण देख रहे हैं और रो रहे हैं, वो रो रहा है, दशरथ रो रहा है, तो ये देखने वाले भी रो रहे हैं। रोते हैं कि नहीं? लेकिन आप कब रोए? फिल्म उसका चित्र वह पर्दे पर आने के बाद ही आपको रोना आया। तो दो निमित्त मिलने पर, निमित्त पर्दा है और कर्म का उदय भी निमित्त है, दो निमित्त एक साथ मिलने पर जो वहां घटना घटी उसको देख करके आप रोए। निमित्त के बिना रोना नहीं आता। वो घटना साकार होने के लिए निमित्त भी आवश्यक होता है, साकार हुआ है तो रोना आता है। तो यहां कहा है सम्यक प्रकृति के उदय में जीव के ऊपर, आत्मा के ऊपर कैसे परिणाम उत्पन्न होते हैं, कैसे भाव आते हैं, तो आयतन की ओर वो जीव आकर्षित होता है। और सम्यक प्रकृति का उदय न होकर के मिथ्यात्व का उदय हो तो उसका आकर्षण अनायतन की ओर बढ़ता है। और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय आने पर तीन प्रकृतियां हैं, विचार करो, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और मिथ्यात्व प्रकृति। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में जीव के परिणाम कैसे होते हैं? अनायतन की ओर, सर्वथा अनायतन की ओर खींचता है। सम्यक प्रकृति के उदय होने पर आयतन की ओर, सर्वथा आयतन की ओर, अनायतन को मुड़ के भी नहीं देखता वो, आकर्षण पूरा उधर रहता है। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय होने पर दोनों पर, ये देखो ऐसा भी एक जाति है कर्म की, जिसके उदय होने पर मिथ्यात्व अनायतन भी अच्छा लगता है और आयतन भी अच्छा लगता है। तीसरा गुणस्थान है ये, तीसरे गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व कर्म का उदय होता है, तीसरे गुणस्थान में, इधर भी और उधर भी दोनों चाहिए। इसलिए कहा आयतन और अनायतन ये दोनों सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के नौ कर्म हैं, ये दोनों नौ कर्म हैं। किस कर्म के लिए? सम्यक मिथ्यात्व कर्म के लिए दोनों नौ कर्म हैं। और मिथ्यात्व की, मिथ्यात्व का नौ कर्म कौन सा? मिथ्यात्व प्रकृति के लिए नौ कर्म कौन सा? छह अनायतन। और सम्यक प्रकृति के लिए नौ कर्म कौन सा? छह आयतन। और अनंत अनुबंधी कषाय, ये चारित्र मुनि है, अनंत अनुबंधी कषाय के लिए नौ कर्म कौन सा? तो कहते हैं उसके लिए भी छह अनायतन। जो अनायतन की ओर आकर्षित रहता है, समझ लेना उसको अनंतानुबंधी कषाय का उदय है और वह उधर आकर्षित कर रहा है, वो अनंतानुबंधी कषाय की पहचान है। आप पूछते हैं ये अनंतानुबंधी को कैसे समझे, वो मिथ्यात्व को कैसे समझे, तो समझो ये देखो बताया जा रहा है। जो अनायतन की ओर आकर्षित रहता है उस जीव को देख करके ये समझ लेना चाहिए कि इसको अनंत अनुबंधी का उदय है, नहीं तो उधर नहीं जाता। जो सत्संग की ओर खींचे, आयतन की ओर खींचे, वो तो अप्रत्याख्यान का उदय। देखो चारित्र मुनि अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान कषाय को कैसे समझे, उसके प्रभाव को, तो ऐसे समझो जो सदा सत्संग की ओर आयतन की ओर खिंचा रहता है, उसमें रुचि लेता है, सत्संग करता रहता है, वो अप्रत्याख्यान कषाय का उदय है, वो अनायतन की ओर नहीं ले जाता। अप्रत्याख्यान अनायतन की ओर नहीं ले जाता वो। इन कर्मों के प्रभाव को समझना है, किसका कैसा प्रभाव रहता है। अप्रत्याख्यान का प्रभाव आयतन की ओर, सम्यक प्रकृति का प्रभाव आयतन की ओर, अनंतानुबंधी का प्रभाव अनायतन की ओर, मिथ्यात्व का प्रभाव अनायतन की ओर, और सम्यक मिथ्यात्व का प्रभाव दोनों की ओर मिक्स। तो ये सम्यक मिथ्यात्व भी हमारा कल्याणकारी नहीं है। सम्यक मिथ्यात्व के उदय में तीसरा गुणस्थान होता है और तीसरे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि नहीं रहता जीव। सम्यक दृष्टि वही जो चौथे गुणस्थान में है, तीसरे में सम्यक दृष्टि नहीं होता। ये बातें ध्यान में रखना है। अब चारित्र मोहिनी के लिए ये कहा है, चारित्र मोहिनी के उदय में जीव विषय कषायों की ओर भी आकर्षित होता है, इंद्रिय विषय। अनायतन आयतन वो अलग बात है, इंद्रिय विषयों की ओर जो आकर्षण बढ़ता है वो किस कर्म का उदय? तो कहते चारित्र मोहिनी कर्म का उदय। चारित्र मोहिनी, चारित्र मोहिनी यानी जो चारित्र आत्मा के चारित्र गुण का घात करता है वो चारित्र मोहिनी। चारित्र गुण का घात करता है वो चारित्र मोहिनी। तो चारित्र मोहिनी चारित्र गुण का घातक है, तो चारित्र किससे घात होता है? चारित्र मोहिनी कर्म से। तो ये कर्म किस ओर ले जाता है? हमको विषय कषायों में ले जाता है और उसी कक्षाएं में जाने वाला असयम ही बनता है। और ये असयम दशा, ये असयम रूप जो प्रवृत्ति है, चारित्र है, बाहरी चेष्टा जो विषयों में होती है, वो असयम है। असयम चारित्र है, अचारित्र है, असयम है। भोग अच्छे लगते हैं और भोग सामग्री अच्छी लगती है, ये संयम है क्या? असयम, ये असयम भाव है। और उस भाव के अनुरूप जो प्रवृत्ति होती है विषयों में, वो पाप कहलाता है, वो पंच पापों में आएगा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, परिग्रह प्रवृत्ति, ये पाप कहलाता है। चारित्र मोहिनी कर्म हमें विषयों की ओर आकर्षित करता है, और एक ओर क्या करता है, एक ओर सम्यक्तु में भी बनाए रखता है। अप्रत्याख्यान के उदय से विषयों की ओर आकर्षित तो रहता ही है, लेकिन अनायतन की ओर नहीं जाता। क्यों? उसको ठोस विश्वास हो गया है, विश्वास आ गया है कि अनायतन मुझे भला बुरा कुछ नहीं कर सकते, उनकी जरूरत नहीं। आयतन भी मुझे भला बुरा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जरूरत इसलिए है कि उनके माध्यम से मुझे आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त होता, ज्ञान सामग्री मिलती है। आत्म साधना किस प्रकार से करना चाहिए, वो सामग्री मिलती है, इसलिए उनका सहारा आवश्यक है। इसलिए सहारा आयतन, आयतन का दूसरा नाम सहारा, योग्य सहारा। सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, ये हमारे योग्य सहारे हैं, इसलिए आयतन है। अयोग्य हो तो अनायतन, तो उधर नहीं जाना, ये संकल्प ले लेता है जीव। अब पुरुषार्थ यही है, अनंत अनुबंधी को फेल करने का क्या पुरुषार्थ? तो ये संकल्प ले लो, ये संकल्प कर लो कि अनायतन मेरे सुख के लिए कारण नहीं, आयतन ही मेरे लिए सुख के कारण। अब इस संकल्प के कारण से आप फिर आयतन के पीछे ही केवल चलेंगे, कल्याण करते जाएंगे, तो उसमें क्या होगा? उसमें अनायतन छूट जाएंगे और संकल्प के कारण हमारा कल्याण होने लग जाएगा। संकल्प आवश्यक है। कई लोग ऐसे होते हैं, महाराज हम मिथ्या तो त्यागे नहीं, लेकिन करते भी नहीं, तो त्यागे क्यों नहीं? मिथ्या तो त्यागे तो नहीं, लेकिन करते भी नहीं, तो करते नहीं है तो फिर त्यागा क्यों नहीं? त्यागना चाहिए। मिथ्या तो त्याग का संकल्प लिए बिना अनंतानुबंधी, ये दर्शन मुनि इत्यादि का उपशमन नहीं होता। संकल्प शक्ति से ही उनको उपशमन किया जाता है और सम्यक प्रकृति को उदय में लाया जाता है, उसका फल मिलना प्रारंभ होता। ये सब ऐसा है। तो आज के संदर्भ में ये बताया गया कि कर्मों का प्रभाव किस प्रकार से होता है।
प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से मिश्रित जो शीतल वाणी मन के मल को धोती अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मा जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे शीश नवाते कर्म हरो मा अब तक हम विषयांध रहे अब ना हम विषयांध रहे।